कोई कहे कि भजन करो तो होगा? नहीं होगा। पहले भूख, फिर बाद में भजन। तो यदि अच्छा भजन करना है तो भोजन भी कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए, पेट भर के चाहिए। इस ब्राह्मण जीवन में भोजन क्या है, या फिर कहो कि इस ब्राह्मण जीवन का भोजन कौन सा है? क्या उत्तर देंगे? मुरली और ज्ञान और शुद्ध संकल्प और अमृत वेला और तो यदि हम ये कहें कि ज्ञान भोजन है, उसके बाद ही योग हो सकता है, या योग को कहो भजन, तो उस योग का आधार भी क्या है? ज्ञान। यदि ज्ञान बुद्धि में भरा है तो ही अच्छा योग हो सकता है। हम योग की बहुत चेष्टाएं करते हैं, योग को हम ये योग भट्टी रखते हैं, परंतु यदि बुद्धि में यदि ज्ञान नहीं है तो वो योग संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। वो जो भजन होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो सकता। तो उसका आधार है ज्ञान, उसका आधार है मुरली। तो इस क्लास में हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पहले मधुबन में हम लोग सुबह रोज बैठते हैं 5:15 से लेकर 6:45 तक, और उसमें ज्ञान की गुह्य बातों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ज्ञान की गहराई को, ज्ञान को गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। और जितना जितना ज्ञान को जाना है, ऐसा लगता है कुछ नहीं जाना। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, मैंने अब तक तुम्हें जो सिखाया है, बताया है, वो केवल एक बूंद मात्र है। तो कैसे इस ज्ञान को समझे, कैसे इस मुरली का अध्ययन करे, क्या करे इस मुरली के साथ, क्या करे कि जिससे ये ज्ञान संपूर्ण बुद्धि में बैठ जाए और वो योग इतना सहज हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते। अभी हमने जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी की उसका आधार भी ज्ञान ही था, और जैसे ही हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, वो अवेयरनेस जैसे ही आ गई, हमारी भावनाएं बदल गई। जैसे भाई जी ने भी कहा, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी कमियां हमारे चित्त में रहती है। उसने हमें कुछ कहा था कभी, या कुछ घटनाएं हुई थी, वो बातें स्मृति में है, कैसे उनको नष्ट करें? वो नष्ट होती है आत्मिक स्मृति से, आत्मिक दृष्टि से। परंतु ये दृष्टि रखनी है, इसका भी ज्ञान, इसकी भी एक साधना है, वो भूल जाती है। तो जैसे हमने कहा सुबह की क्लास में, हमने कुछ पॉइंट्स निकाली थी, ये बहुत सुंदर पॉइंट्स थी, जिसमें हमने ऐसी 26 मेथड्स निकाली थी सबके चिंतन से, जिस रीति से मुरली को पढ़ा जाए या सुना जाए। 26 मेथड्स ऑफ रीडिंग मुरली, कोई एक दो नहीं, 26। किस किस रीति से मुरली को पढ़ा जाए, हम हम सेंटर पर आते हैं, मुरली सुनते हैं, नोटबुक में कुछ कुछ बातें नोट करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि फिर से हम वो डायरी खोल के देखें उसमें क्या लिखा है, कितनी डायरियां भरी है एक एक ने, कितनी भरी होगी, 5, 6, 7, 8, सब रखिए, और उसमें क्या है अगर कोई पूछे तो हमको पता नहीं, वो बस नोट करके रख लिए। तो क्या ऐसी नवीनता लाए इस ज्ञान में जिससे ये ज्ञान रमणीक हो जाए, क्योंकि जब तक नवीनता नहीं, वही ढंग से हम अगर मुरली पढ़ रहे हैं और वही ढंग से सुन रहे हैं तो एक दिन निरस हो जाता है। वही मुरली, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हें घर जाना है, दिव्य गुण धारण करना है, विनाश सामने खड़ा है, अब तुम्हें सेवा भी बहुत करनी है, बहुत बार सुना है, इतना सुना है कि अब उसका असर होना, विनाश सामने खड़ा है, जो कुछ आंखों से देखता है देखते हो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बाप तुम्हें ले जाने आया है, सतयुग के नजारे सामने हैं, ये दुनिया गई की गई, तो सभी अपनी डायरी में नोट करें जो बातें हम यहां अभी बताने वाले हैं, और कल से अपनी मुरली क्लास में बैठते समय, मुरली सुनते समय, इन में से कोई भी एक या दो या तीन या अनेक या सारी की सारी एक साथ टेक्निक्स अप्लाई की जाए। आज की मुरली मिल सकती है, आज की कॉपी भाई को किसी को बोले, तो ऐसी हम 26 टोटल बातें देखेंगे, 26 मेथड्स जिससे ये ज्ञान एकदम रमणीक हो जाए, वही ना लगे, वही निरसता ना हो, वही बोर्डम ना हो, कुछ तो उसमें नया आ जाए, ऐसी नया एक ज्ञान का प्रकाश अंदर में आ जाए कि हमको लगे कि हाँ आज कुछ तो नया पाया, आज तो कुछ नवीन हमारे हाथ में लगा। और रोज ये जो बातें हम बताएंगे ये केवल नोट करने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, परंतु इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, और जब हम करेंगे इसका एप्लीकेशन, हमारे पास ये 4 पेज की रोज मुरली है जिसमें महावाक्य है, प्रश्न उत्तर है, कोई गीत है, संपूर्ण मुरली है, धारणा है, वरदान है और फिर स्लोगन है, इतनी इसमें बातें हैं। यदि इस एक मुरली का ही एक हफ्ता भर अध्ययन किया जाए तो भी कम है, केवल एक मुरली का, यह एक ही मुरली काफी है आत्मा को संपूर्णता तक ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें जो वाक्य है एक एक वाक्य में रहस्य भरा हुआ है, ये साधारण वाक्य नहीं है, वेद उपनिषद गीता पुराण, कुरान बाइबल धम्मपद, सारे धर्मों का यह सार है, इतना गुह्यता इसमें है, हमको लगता है कितना साधारण वाक्य है, जिन्होंने गीता बनाई है वह इसका अर्थ नहीं जानते, इस एक ही वाक्य में कितनी गुह्यता है। तो चलते हैं इस मुरली को समझने की, या कहो ज्ञान को समझने की भिन्न भिन्न विधियों की तरफ। सबसे पहली मेथड, वर्ड मेथड, सबसे पहली मेथड वर्ड मेथड, वर्ड अर्थात शब्द, शब्द विधि। पूरी मुरली से कोई एक शब्द ले लेना है और उसका चिंतन करना है, जैसे कि मुरली में हम सुन रहे हैं, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा है, मुरली में शब्द आया है एकांत, अब इस एक शब्द को वहां से निकाल लो, ठीक है, वर्ड मेथड अर्थात एक ही शब्द का आप चिंतन करना है हमें। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण केवल शब्द हम निकाल लेंगे मुरली से, तो एक शब्द ले लिया एकांत, दूसरा शब्द ले लिया कहीं से भी हम ले सकते हैं दृष्टि, बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। दूसरा शब्द एक ले लिया पवित्र दृष्टि। सुना हमने बहुत है पर चिंतन हमने नहीं किया है। एकांत हमने ये शब्द बहुत बार सुना है पर क्या इस एक कांत शब्द की गहराई में हम गए हैं? एकांत अर्थात क्या? जो लिख सकते हैं वो लिखना चालू करें रोज। एक टॉपिक निकालना है, एक शब्द लिया और उसका विस्तार करना चालू किया। एकांत अर्थात क्या? एकांत प्राप्त करने की विधि क्या है? क्या मेरे जीवन में एकांत है? क्या मैं एकांतवासी हूं? एकांत के क्या क्या फायदे हैं? ऐसे एकांत के क्या क्या फायदे हैं? अगर हम लिखना चालू करें तो 10 तो आराम से लिख देंगे, परंतु हम बुद्धि को स्ट्रेस नहीं दे रहे कुछ भी। हम चाहते बस चुपचाप जाके मुरली सुन ले, काम पूरा हो गया, चलो घर। एक शब्द लेना और उसकी गहराई में जाना, यह पहली विधि है। तो कल जब मुरली सुनने बैठेंगे तो ऐसा करना कि केवल शब्द लिखना कि किस शब्द के ऊपर मुझे दिन भर चिंतन करना। यह चिंतन कहां करेंगे? कहीं पर भी कर सकते, चलते फिरते ऑफिस में बैठे हुए हैं, बिजनेस में, दुकान में है, हॉस्पिटल में है, सेंटर पर है, घर पर है, कुछ काम कर रहे हैं, बस वो एक शब्द हमने पकड़ लिया है, उस शब्द का गहराई से हम चिंतन करने लगे, तो दिस इज नोन एज वर्ड मेथड। दूसरी मेथड है सेंटेंस मेथड। दूसरी मेथड है सेंटेंस मेथड। सेंटेंस अर्थात वाक्य, कोई एक बहुत सुंदर वाक्य इसमें से ले लेना है, कोई भी एक वाक्य, ऐसा वाक्य जो हमने शायद कभी सुना नहीं था। जैसे आज की मुरली में मुरली का सबसे अंतिम महावाक्य, कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं, छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे, इस वाक्य को हमने ले लिया। दिस इज सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड अर्थात एक वाक्य ले लिया, अगर छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। अब इसके ऊपर चिंतन चालू, कैसे चिंतन करेंगे? बाबा ने कहा है और छिपाते रहेंगे तो क्या क्या छिपाते हैं, ये चिंतन के बिंदु है। हम क्या क्या छिपाते हैं? पाप, विकर्म। अगर क्या मैं भी छिपा रहा हूं? अगर मैं भी छिपाते रहूंगा तो क्या हो जाएंगे? और ही काले। काला अर्थात क्या? बाबा काला किसको कह रहे? क्या कोई रंग है काला? बाबा जो मुरलियों में भाषा प्रयोग करते हैं ये पूरी अलंकारिक भाषा है, ये कोई साधारण भाषा नहीं है, ये साहित्य की भाषा है। इसमें सारे उदाहरण ही उदाहरण है, संसार के उदाहरण, और जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो प्रतीकात्मक भाषा है, रूपक है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, पैराबल्स, स्टोरीज है, एनेक्डोट्स जिसको कहते हैं, किंवदंतियां, कहावत, मुहावरे, इन सभी बातों से ये मुरली भरी है। साधारण लग रहा है परंतु साधारण नहीं है। तो मुरली से ऐसे ऐसे सेंटेंस ले लेना है, रोज की मुरली से कोई एक दो तीन वाक्य एकदम वहां से ले लेना है और उसको याद रखना है। क्या करना है? उसको याद रखना है। बाबा के कुछ कुछ महावाक्य बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल। एक मुरली थी 85 की शायद, 18 जनवरी, जिसमें बाबा ने कहा है आज ज्ञान सागर बाप हजारों ज्ञान गंगाओं में नहाने आया है। कितना सुंदर वाक्य है, आज ज्ञान सागर बाप हजारों ज्ञान गंगाओं में नहाने आया है। ऐसे बाबा के बहुत सुंदर सुंदर वाक्य है। यदि तुम मेरी याद में मगन रहो तो, किसको याद है ये? अव्यक्त महावाक्य है, बहुत प्रसिद्ध। यदि तुम मेरी याद में मगन हो जाओ तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, कितना सुंदर महावाक्य है। बाप तैयार है, मुझे यूज करो। ये वाक्य है बाबा के, सुंदर सुंदर वाक्य। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, क्या सुना है ये? साकार मुरलियों में आते हैं, कितना हृदय स्पर्शी मर्म स्पर्शी वाक्य है कि बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, बच्चों पवित्र बनो। पवित्रता के लिए महावाक्य कहा है बाबा ने कि भगवान स्वयं भीख मांग रहा है। मुरलियों से वाक्य ले लेना है, और क्या करना है, उनका अलग से नोटबुक बना के रखना और उसे याद कर लेना है। ये एक एक वाक्य जीवन में जब अचानक से परिस्थिति आ जाएगी तो काम आएगा, क्योंकि परिस्थितियों के समय कुछ भी याद नहीं रहता है, सारा ज्ञान एक तरफ रह जाता है। जिस वाक्य के ऊपर हमने चिंतन किया है, मनन किया है, बस वही याद रहता है। और ज्ञान का एक वाक्य हिमालय जैसी परिस्थितियों को भी नष्ट कर सकता है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हिमालय की तरह उस परिस्थितियों को नष्ट करने का सामर्थ्य एक वाक्य में है। जैसे रामायण में दिखाया है कि रावण जो है सारे आकाश में बाण ही बाण फैला देता है, राम एक बाण मारता है और सारे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ज्ञान का भी एक वाक्य जो है वो इतना शक्तिशाली है। तीसरी मेथड है टॉपिक मेथड। टॉपिक मेथड, एक टॉपिक इसमें से ले लेना है मुरली से, सारी की सारी मुरली लिखने की बजाय टॉपिक्स लिख लेना है, चार टॉपिक्स पांच टॉपिक्स। जैसे कि आपको किसी ने कह दिया उस पर आपको भाषण ही करना है, जैसे मुरलियों में आया है कोई भी एक महावाक्य आप ले सकते हैं कहीं से भी। इस समय करप्शन तो बहुत है, इस समय करप्शन तो बहुत है। सुबह किसी ने प्रश्न पूछा था करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार, तो हम ये प्रश्न ले सकते हैं, क्या ब्रह्मा कुमारी का यह ज्ञान संसार का जो करप्शन है उसको खत्म कर सकता है? कोई पत्रकार हमसे पूछे कि आप जो ज्ञान सुनाते हो क्या उससे करप्शन नष्ट होगा? ये टॉपिक है। जैसे किसी ने हमको एक आर्टिकल ही लिखने के लिए दे दिया है जो कि मैगजीन में पब्लिश होने वाला है, तो कितना टेंशन आ जाएगा, दिन रात उसके पीछे लग जाएंगे। जैसे किसी को कोई थीसिस करना होता है तो पूरी उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो कोई भी एक शब्द ले लेना, एक टॉपिक ले लेना और उसका विस्तार करना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना। तो ये मेथड है टॉपिक मेथड। अगली मेथड है स्टोरी मेथड। स्टोरी, जैसे ये मेथड अव्यक्त वाणियों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। बहुत सारी अव्यक्त वाणियां जो है उसकी हम एक स्टोरी बना सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ। इस मेथड को हम कल देखेंगे। कल जो अव्यक्त वाणी है सुबह, उस पर सुबह की जो अव्यक्त वाणी चलेगी उस पर हम दोपहर में जो क्लास कराएंगे उस पर हम इस स्टोरी मेथड का विस्तार करेंगे। नेक्स्ट मेथड है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन मतलब आंखों से देखना, अंतर्दृष्टि से विजुअलाइज करना उसको। क्या विजुअलाइज करेंगे? जैसे ही मुरली में वाक्य आता है उसको हम आंखों से देखेंगे। जैसे बाबा मुरलियों में कुछ भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं है, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, अब ये वाक्य है, इसको हमको विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करेंगे? कैसे विजुअलाइज करेंगे? देखना है बाबा जैसे बैठे हैं, अपने को देखना है या किसी और आत्मा को। जीवन में कोई भी परिस्थिति आई, हम बाबा के पास गए, बाबा से राय ले रहे हैं, ये करना है कि नहीं करना है, इसको हमने विजुलाइजेशन बना दिया है। और इतना उसको वो विजुलाइज भी ऐसा करेंगे, उसमें कलर भर देना है, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन। वो वाक्य को हमने, जो वाक्य मुरली का सारे वाक्यों को करना तो मुश्किल है, समय चाहिए, परंतु यदि एक कोई भी वाक्य लिया और उसको हम देखे, जैसे सतयुग की बात आई, हम यदि मुरली, ये हमने पढ़ने के लिए बनाई थी मेथड्स, सुनने के लिए भी हो सकता है, परंतु सुनते समय तो एक पॉइंट के बाद दूसरी पॉइंट आ जाती है, तो विजुअलाइजेशन कभी कभी रुक जाता है, पर तब भी की जा सकती है। विजुअलाइज करना जो भी चीजें हम, क्योंकि एक बार हमने मन से आंखों से देख लिया तो वो भूलती नहीं है। जैसे किसी को हम अगर कहे ये किताब तुमने पढ़ी है 10 साल पहले, उसमें क्या था, हमको याद नहीं है। अगर किसी को कहो ये मूवी तुमने देखी है 10 साल पहले, उसमें क्या था, सब याद है। क्यों? क्योंकि वो 3D है, वो 3D है, मूवी याद है पर किताब याद नहीं, वो सारे डायलॉग याद है उसमें के, पर ये याद नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व थी, आंखों से देखा भी था, सुना भी था, उसकी चर्चा भी की थी थोड़ी समय, इसके वजह से ब्रेन में वो इम्प्रिंट हो गई है। तो विजुअलाइजेशन मेथड में क्या करना है, देखना है। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, वो जब बहुत छोटा था उसके पास पैसे नहीं थे, इतना गरीब था वो लड़का छोटा सा, कि वो लड़का पढ़ाई नहीं कर सकता था। वो स्कूल में काम करता था, उसकी ड्यूटी थी घंटी बजाना बीच की, एक दो पीरियड के बीच की, पैसे उसके पास थी नहीं, परंतु उसने एक विजन बना लिया था, जब भी घंटी बजाता था, टन टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। एक विजन बनाया उसने अपना, अमेरिका का मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, और उस विजन को देखता रहा दिन रात और वो बन गया। ये विजन हमें याद है, हम जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे वहां के जो डीन थे डॉक्टर आईचीत, उन्होंने एक बार अनुभव सुनाया था कि मैं जब 60s में फर्स्ट MBBS में एडमिशन लिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आया, जिस दिन कॉलेज में पैर रखा उस दिन मैंने संकल्प किया था इसी कॉलेज का एक दिन मैं डीन बन जाऊंगा। कितना ऊंचा संकल्प है, वहां तो डर रहता है रैगिंग का और कितनी सारी बातें, फर्स्ट MBBS में किसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या है, वहां संकल्प किया था इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। ये विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है, इसके लिए वाक्य जो आते हैं उनको विजुअलाइज करो, उसको देखो। मुरली खाली सुनने की नहीं है, देखने की है, आंखों से देखना है उसे। अगली मेथड है मेंटल मूवी, मेंटल मूवी मेथड, उसको एक चलता फिरता मूवी बना दो। एक था विजुअलाइजेशन, अभी उसके भी आगे की स्टेज है मूवी। उसके लिए पर मुरली कई बार पढ़ने की आवश्यकता है, एक अव्यक्त वाणी अगर ले ले तो उसको कई बार कई बार कई बार, ताकि धीरे धीरे वो सेंटेंस पता हो जाए, वो लाइन पता हो जाए, वो पैराग्राफ पता हो जाए, वो पैटर्न पता हो जाए, और फिर वो सारा का सारा वेल निट जैसे एक हो जाता है और वो एक मूवी बन जाती है। तो मेंटल मूवी, जैसे एक मूवी होती है, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन, उस तरह यदि पूरी मुरली को एक मूवी बना ली जाए, या फिर उस मूवी के कुछ कुछ मुख्य मुख्य वाक्य और उनको फिर जोड़ा जाए, ये कल हम देखेंगे उसके ऊपर, कल जो हम मुरली रिवाइज करेंगे उसमें इस मेथड की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, कैसे उसको एक मूवी बना दी जाए। नेक्स्ट मेथड है, ये मेथड आपको काम आएगी जिनको हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती, क्योंकि भगवान की जो भाषा है वो हिंदी है, इसको तो समझ लो, और उसने जो महावाक्य कहे हैं वो हिंदी में कहे हैं, उसको उसी भाषा में समझना है। हम दूसरी भाषाओं में समझ सकते हैं, अनुवाद किया जा सकता है, परंतु जैसे कहते हैं एक ग्लास में यदि सेंट है, फ्रेग्रेंस, एरोमा, कोई सुगंध है, और उस सेंट को हम दूसरी बोतल में डालें तो आधा तो उड़ जाता है। उसी तरह जो हिंदी के शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है उसको उसी भाषा में समझने का प्रयत्न करना। तो कौन सी मेथड हम कह रहे थे? मेंटल मूवी के बाद बाबा के जो वाक्य है इसको हम कह रहे थे ऑडियो मेथड। ऑडियो या लाउड रीडिंग दो मेथड्स है। ये इसलिए है भाषा को अच्छे से समझने के लिए। ऑडियो अर्थात हम आजकल तो सभी के पास मोबाइल है और सबके पास ऑडियो मुरली आ जाती है, तो मुरली सुनते सुनते मुरली पढ़ना, हाथ में मुरली हो और हम सुन भी रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं, ये मेथड, इसे कहे जा रहे हैं ऑडियो मेथड। और दूसरी एक मेथड है लाउड रीडिंग मेथड। लाउड रीडिंग मतलब जोर से पढ़ना, जब अकेले में बैठे हैं तो अकेले में पढ़ना उसको, ताकि हमारा पढ़ा हुआ हम सुने, आंखें देखे, मुंह बोले और हम सुने, थ्री सेंसेस जहां इन्वॉल्व है, तो मेमोराइजेशन ज्यादा अच्छा होगा और उससे हमारे जो उच्चारण है मुरली के वो भी स्पष्ट होंगे। नहीं तो हम पाते हैं कि भाषा, वैसे तो बाबा भावना की भाषा समझता है, पर बाबा ने यह भी कहा है कई मुरलियों में, भाषा सीखो, साकार मुरलियों में आया है। जब तक इस साहित्य को उसी भाषा में उसी शैली में ना समझा जाए उसका वो रस भी नहीं आएगा हमको। अनुवादित तो पढ़ सकते हैं हम, परंतु कब तक वो पढ़ते रहेंगे? बाबा ने एक विदेशियों से मुलाकात करते हुए कहा था कि डायरेक्ट हिंदी में जो सुनते हैं वो तवा तो माउथ, और जो ट्रांसलेटेड सुनते हैं वो है सूखी चपाती, ड्राई चपाती। अभी अभी एक अव्यक्त वाणी में आया था कुछ मास पहले ही। तो क्या खाना है, डायरेक्ट तवा टू माउथ या सूखा? तवा टू माउथ। तो उसके लिए सबसे पहला एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ जो सबको करना है, अगर हिंदी नहीं आती है तो हिंदी को सीखने का प्रयत्न, सीखने के लिए उस भाषा को बोलना, उस भाषा का जिन लोगों को ज्ञान है उनके साथ रहना, उसके बारे में पढ़ना, जानना, सुनना, उसी में गीत भी सुनना, लिखना, बोलना, नहीं आती है तो भी बोलना। इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी लैंग्वेज यू मस्ट मर्डर इट फर्स्ट, ऐसी कहावत है। यदि कोई भाषा सीखनी है तो उसको पहले मारना होता है। भगवान की भाषा हिंदी है, हम भी क्यों ना प्रयत्न करें कि इसी भाषा में पढ़ेंगे, कब तक वो अनुवादित पढ़ते रहेंगे? इसमें जो रस है, इसमें जो सुगंध है वो उसमें नहीं। संकल्प करना है कि मुझे इसी भाषा में समझना है, चाहे समझ में नहीं आती है, एक पेज पढ़ने को कभी कभी एक घंटा भी लग सकता है, इतने कठिन महावाक्य है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी प्रयत्न तो चालू करो, कोशिश तो करो। हमने देखा है मधुबन में बहुत सारे साउथ इंडिया के भाई बहने हैं, वो सभी अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब मधुबन आए तो बोलते ही नहीं आता था, हां और ना, शिव बाबा आती है, ब्रह्मा बाबा जाती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ उनको पता नहीं, ब्रह्मा नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है। तो फिर भी सीखते गए सीखते गए, और आज पता भी नहीं चलता है जब बोलते हैं तो कि ये लोग साउथ इंडिया के हैं। प्रयत्न, दृढ़ता, टाइपिंग, कितनी सारी दादियां, पुष्पा रानी दीदी अनुभव सुनाती है, जब मधुबन में आई तो बाबा ने काम दे दिया, बच्ची टाइपिंग सीखोगी सिंधी? उसने कहा हां। और कितना दिन में? उसने कहा 15 दिन। 10 दिन में सीख गई। कितना बड़ा काम, संकल्प, दृढ़ता। दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं। तो ये मेथड है ऑडियो मेथड और रीडिंग अलाउड मेथड। अगली एक मेथड है मुरली पढ़ने की, अंडरलाइन मेथड। यदि आपके पास हार्ड कॉपी है, तो उसमें कलर पेन से अंडरलाइन कर लो, कलर पेन से मेन मेन चीजों को अंडरलाइन कर लो, ताकि अगली बार जब पढ़ो तो जो अंडरलाइन किया हुआ है बस वही पढ़ेंगे। आजकल तो मोबाइल में पीडीएफ फाइल होती है, उसमें भी अंडरलाइन किया जा सकता है। बहुत सारे एप्स ऐसे आ गए हैं कि उसमें भी अंडरलाइन हो सकती है। तो इसमें हम कुछ कुछ जो महावाक्य है, जैसे आज की मुरली में बहुत सुंदर वाक्य है, बाबा ने कहा है तुम अपने पतियों के पति को उधर याद करते हो, बाप आए हैं अमृत पिलाने, कौड़ी से हीरा बनाने। कितना सुंदर वाक्य है, बाप आए हैं तुम्हें अमृत पिलाने। विजुअलाइजेशन, मैं अमृत पी रहा हूं, बाबा अमृत उधर से कलश से दे रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं। विजुअलाइज किया और उसको मेंटल मूवी भी बना दी। हम गए यहां से बाबा के पास, बाबा के सम्मुख है, बाबा ने कलश लिया ज्ञान का और हमें अमृत पिला रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। ये दृश्य कन्वर्ट करने के बाद ये याद रह जाएगी। अगली मेथड है टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड। टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड, ये मेथड क्या है, जो भी वाक्य है या पैराग्राफ है उसको ड्रिल में परिवर्तन कर दो। जैसे अभी अभी किया, एक वाक्य पढ़ा हमने कि बाप ये पतियों का पति है जो तुम्हें अमृत पिलाता है, तो इसको हम अभी स्पिरिचुअल ड्रिल बना देंगे। स्पिरिचुअल ड्रिल में कैसा करेंगे, जो बताया ऊपर गए और बाबा हमको दे रहा है। जैसे सुबह आज अमृत वेले कौन कौन थे यहां पर, कई भाई बहने थे, उसमें हमने एक अनुभव किया था कि बाबा के पास गए, बाबा हमें ताज पहना रहा है, बाबा हमें माला पहना रहा है, बाबा हमें तिलक दे रहा है, बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया है, या बाबा ने हमारा हाथ अपने हाथ में ले लिया है। एक भाई था जिसे भाषा नहीं आती थी हिंदी, उसने क्या अभ्यास किया बताए, कि मैं बाबा के पास गया, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और सारी हिंदी भाषा मुझे ट्रांसफर कर रहा है, मेरा हाथ पकड़ा और हिंदी का व्याकरण, हिंदी के उच्चारण, हिंदी का धारा प्रवाह फ्लुएंसी और हिंदी के शब्द, ये चार चीजें मुख्य है भाषा में, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ग्रामर, प्रोनंसिएशन। तो बाबा मुझे ये चारों ही चीजें दे रहा है। कितना सुंदर अभ्यास है, हाथ पकड़ा और लैंग्वेज ट्रांसफर ना, जीपीएस, स्ट्रांग कनेक्टिविटी है यहां पर। तो अलग अलग अभ्यास करने हैं रोज, एक ही एक नहीं अभ्यास, हर दिन नया अभ्यास, हर दिन नया। तो इट इज नोन एज टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड। टेक्स्ट जो पढ़ा, जैसे अभी हम एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, आप हमको बताएंगे इसको ड्रिल में कैसे कन्वर्ट करना। आज का वरदान, जो बच्चे सदा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते, बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं, हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। ये पढ़ा, अभी इसको ड्रिल में कन्वर्ट करो। कैसे ड्रिल बनाएंगे इसकी, ड्रिल बनाओ अब इसकी, इस पर योग कराना है। यदि आपको काम दिया गया कि इस वरदान पर योग कराना है, तो कैसे करेंगे, कठिन काम है, कठिन तो नहीं है, सहज है। क्या कहा है, जो आत्माएं बाप में समाई हुई रहती है, बाप उनसे जुदा नहीं और बाप बच्चे उनसे जुदा नहीं, जैसे एक बॉन्ड है बाप और बच्चे का, या दोनों समा गई है एक दूसरे में। भक्ति में कहते हैं ज्योति ज्योत में समा गई, बाबा कहते ऐसा होता नहीं है कभी, परंतु हां आत्मा प्रेममयी आत्मा बाप में लीन हो जाती है, लवलीन स्थिति का तो वर्णन बाबा ने किया है। तो हम ये भी वर्णन अनुभव करें जैसे परम धाम में वो है और मैं हूं और हम दोनों एक दूसरे में समा गए, परम धाम की स्थिति में, कि परमात्मा में जैसे आत्मा खो गई, ये एक अनुभव परम धाम का। दूसरा सूक्ष्म वतन में, बाबा एक प्रेममय दृष्टि हमें दे रहा है और उस दृष्टि में हम उसके प्यार में समा गए और प्यार में समाने के बाद मैं संपन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, अब कोई भी सहारा मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। अभी जो जो चीजें आकर्षित करती है उनको देख लेना, और वो बहुत दूर दूर जा रही है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, मुझे अब कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता। वो आत्मा संपन्न है, बाप एक, बाप दूसरा ना कोई, वो मुझ में और मैं उसमें, ये अवस्था। भक्ति में एक है भक्ति, एक है सन्यास, एक है बाबा का ज्ञान। ऐसे तीन अगर हम कर ले तो तीनों की ही एक रीति से अवस्था हुई है समा जाने वाली। पहली भक्ति में, पहले भक्त अलग और भगवान अलग, फिर धीरे धीरे जैसी उसकी भक्ति बढ़ती है तो उसको लगता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, और जैसे एकदम आगे चला जाता है तो जैसे एक हो जाते हैं। मराठी में कहते हैं काम क्रोध निम्बले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। उसे खुद ही अनुभव हो रहा है कि मैं ही वो हूं, तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, एक हो गई है। कृष्ण ध्याति गीति, कृष्ण ध्याति चित्ति, हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का चिंतन करते करते वो गोपिया ही कृष्ण बन गई है। ये अवस्था है भक्ति की भी, पराभक्ति की अवस्था। भक्ति दो प्रकार की है, वैधी भक्ति और पराभक्ति, कि भक्त इतना खो गया है कि बस वो एक हो गया है। दूसरी संन्यास की अवस्था, उसमें व्यक्ति संन्यास लेता है और समाधि को प्राप्त करना चाहता है। धीरे 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 समाधि बढ़ती जाती है, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि, जिसमें बाबा कहते हैं बुदबुदा समा गया। वो उनको ऐसे अनुभव होता है, वैसे होता नहीं है पर अनुभव तो होता है कि जैसे वो एक हो गए। उसी तरह बाइबल में अगर जाओ तो वहां पर बहुत सुंदर तीन महावाक्य, अलग अलग जगह पर जीसस क्राइस्ट से पूछता है कोई, तुम कौन हो? वो कहता है आई एम सन ऑफ गॉड। परमात्मा अलग, मैं अलग, दो। फिर पूछते वेर इज योर फादर? माय फादर दैट आर्ट इन हेवन। वेर इज हेवन? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन योर हार्ट। माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर। ये दूसरी अवस्था है, मैं उसमें और वो मुझ में। विशिष्ट अद्वैतवाद, पहला द्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, वो मुझ में और मैं उसमें। तीसरा, बट हाउ यू आर रिलेटेड टू योर फादर? जीसस क्राइस्ट कहता है माय फादर एंड आई आर वन। निर्विकल्प समाधि, तुझी माझी होती एक ज्योति, बाप समान। यहां पर मैं शिव बाबा का बच्चा हूं ज्ञान में आते हैं तो, बाद में वो मुझ में है और मेरे साथ है, बाप मुझ में समाया हुआ है, और अंतिम अवस्था संपूर्ण बाप समान अवस्था अर्थात उसके समीप। तीनों ही अगर देखे जाए, ये भक्ति में उसका उदाहरण है। तो हम इस मेथड की बात कर रहे थे। अगली मेथड रिलेशनशिप मेथड। मुरली सुनने के पहले ही एक संबंध पकड़ लो कि आज पूरी मुरली इस संबंध से हम सुनेंगे, जैसे कि वो मेरा गार्ड है, वो मेरा गाइड है। जीवन में कोई परिस्थिति है तो मैं आज मेरे गाइड के पास जा रहा हूं, वो सुप्रीम गाइड है और वो मुझे आज गाइड करने वाला है। रिलेशनशिप मेथड, तो मुरली सुनते समय, पढ़ते समय, अध्ययन करते समय पहले ही एक संबंध निश्चित कर लिया कि आज मैं स्टूडेंट के रीति से मुरली पढ़ूंगा। तो स्टूडेंट के लिए रीति से पढ़ेंगे तो सारे नोट्स चाहिए, पेपर चाहिए, टेक्निक्स चाहिए। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। दो प्रकार के स्टूडेंट होते, एक स्टूडेंट होते बहुत पढ़ते रहते, हार्ड वर्क करते बहुत, दूसरे होते स्मार्ट जिनके पास टेक्निक्स है पढ़ाई करने की, निमोनिक्स, मेमोराइजेशन टेक्निक से थोड़ा सा पढ़ लेते और पूरा तुरंत ग्रहण कर लेते, और कोई कोई दिन रात पढ़ते ही रहते पढ़ते रहते फिर भी एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता है, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, माइंड ट्रेनिंग नहीं है, मेमोरी ट्रेनिंग नहीं है। तो यहां पर भी वैसा ही है। तो रिलेशनशिप मेथड। अगली है कॉन्ट्रास्ट मेथड। ये सबसे अच्छी मेथड है और ये तो पूरी मुरलियों में आते रहता है, सतयुग सतयुग और कलयुग बाबा मुरलियों में कॉन्ट्रास्ट करते हैं। फिर भक्ति में क्या होता है, ज्ञान में क्या होता है, इसका कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मेथड में हम निरंतर तुलना करते रहे कि मुरली में ये कहा है पर इसका व्यवहारिक जीवन में कुछ फायदा है या नहीं। दो प्रकार के धर्म है, एक है सैद्धांतिक धर्म, एक है व्यवहारिक धर्म, थियोरेटिकल रिलीजन एंड प्रैक्टिकल रिलीजन। हम केवल थियोरी में ना रह जाए, प्रैक्टिकल में आए, सिद्धांत में नहीं केवल व्यवहार में आ जाए। तो कॉन्ट्रास्ट करना है बातों को। देखो जैसे मुरली में बाबा कोई भी महावाक्य एक उच्चारण करते, शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है, फिलोसॉफी फिर शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। परमपिता तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य कहते हैं वह अंतर्यामी है, तो मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट। मुरली पूरी कॉन्ट्रास्ट से भरी है, बाबा तुलना कर रहा है, संसार के लोग क्या कहते हैं, यहां बाप क्या कहते हैं, मैं जो सुनाता हूं वो सुनो, फिर जज करो कि मैं राइट हूं या वो राइट है। मैं आया हूं तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान सुनाने, सार सुनाने, शास्त्रों का सार सुनाने, वो लोग शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, राइट क्या है तुम जज करो, बहुत बार मुरलियों में आया है। तो बाप नहीं चाहते कि हम तुरंत स्वीकार कर ले, परंतु बुद्धि चलाए, कॉन्ट्रास्ट। तो मुरली में जो भी आता है, भक्ति आती है या कोई रस्म, कोई रिवाज, कोई त्यौहार, कोई धारणा की पॉइंट, तो उसका संसार में क्या महत्व है, उसका कॉन्ट्रास्ट करना, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रास्ट मेथड। उसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेथड, मुरली से कुछ नई बातें एक्सट्रैक्ट कर लेना जो आज तक हमने सुनी नहीं। बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, परंतु आज ही तीसरी लाइन में बाबा ने कहा एक एक बात नई है नई दुनिया के लिए, एक एक बात नई है नई दुनिया के लिए। तो न्यू पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना मुरली से, जो आज तक कभी सुनी नहीं थी, जो एकदम नई है। वो पॉइंट भी हो सकती है, शब्द भी हो सकता है। जैसे मुरलियों में एक बार आया था, बाप तुम्हें चौप चीनी खिलाते हैं, अभी एकदम नया शब्द है ये, चौप चीनी कोई खाने की वस्तु है ताकत देने वाली। तो ऐसी जो वाक्य आते हैं वो याद करने जैसे है। तो न्यू पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करने वाली मेथड। फिर है क्वेश्चन मेथड। मुरली पढ़ ली, अब इसमें से क्वेश्चन बनाओ, खुद ही बनाओ। एक तो बना हुआ है यहां पर, वो नहीं, दूसरे क्वेश्चन बनाओ, कम से कम 10 क्वेश्चन बना ले इस मुरली से। जैसे हमको कहा जाए ये मुरली लो और ये 10 लोग हैं, इनकी क्विज करनी है मुरली की, तो इसमें से हमको प्रश्न बनाने पड़ेंगे। जैसे कुछ भी प्रश्न बना सकते हम, जैसे जिस्मानी यात्रा, जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा इसमें क्या अंतर है, ये प्रश्न है एक, तो हमारी बुद्धि चलने लगेगी। जैसे बहुत बार मुरलियों में आता है ये है रूहानी यात्रा, वो है जिस्मानी यात्रा। चलो हम अभी अभी चिंतन करते दोनों में क्या अंतर है, पॉइंट्स फटाफट बताओ। उसमें समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता, ये एक सेकंड की यात्रा है। दूसरा, वो शरीर की यात्रा है या आत्मा की यात्रा है। तीसरा, ये कहां पर भी कर सकते वो कहां नहीं कर सकते, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए माल पानी चाहिए इधर नहीं चाहिए, और साधन चाहिए वहां पे, बिना साधन के कैसे करोगे, मानसरोवर और कैलाश और वो जो जो यात्रा करते हैं, और मेहनत बहुत है उसमें, और उसमें शरीर अच्छा चाहिए। यहां तो खटिया पे लेटे लेटे भी बाप को याद करो कभी बाबा ने कहा था, बाबा वो मुरली में नहीं आ सकता, उसका पैर फ्रैक्चर है, बाबा ने कहा था स्ट्रेचर पर बैठ के लेके आओ, बिठा के लिटा के, उसमें शक्ति गवाते इसमें शक्ति भरते। तो ये देखो हमने एक प्रश्न निकाला, उसके उत्तर निकाले। तो मुरली सुनते सुनते खाली प्रश्न लिख ले, बस चार प्रश्न पांच प्रश्न लिख लिया, फिर सारे दिन भर उसका हम चिंतन करके प्रश्न उत्तर निकालेंगे। जो लिख सके वो लिखे, जो जिनको नहीं लिखना है वो सोचे, एकांत में चले जाओ, मुरली में महावाक्य मीठे बच्चे, एकांत में रहकर ज्ञान का मनन विचार सागर मंथन करो तो ज्ञान पक्का हो जाएगा। प्रश्न निकाल लिए, एकांत में गए, चिंतन किया, तो दिस इज नोन एज क्वेश्चन मेथड। दूसरा है आंसर मेथड। एक प्रश्न मुरलियों में आता है, आज की मुरली में दो उत्तर है, दो प्रश्न है, तो प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर नहीं पढ़ना, उत्तर हम खुद निकाले, और कम से कम एक नहीं 10 उत्तर निकाले। दूसरा प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर हम खुद निकाले, जो लिखा है वो उसको छुपा दो, वो नहीं, अपना मनन करो। जैसे बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं, इसके 100 उत्तर निकल सकते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सब की होई। ये जो है कृपा वाली, बाप ने हम पर कौन सी कृपा की है, इससे पहले कि हम इसका उत्तर पढ़ ले अपनी बुद्धि को दौड़ाओ चलाओ, कौन सी कृपा उसने हम पर की है, कौन सी की है? हाँ, पढ़ाने की कृपा की है, ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया था, और वो खुद मिला है, उसका मिल जाना ही उसकी कृपा है, उसका मिल जाना ही उसकी कृपा है। अरे भक्त देखो, सन्यासी देखो, तपस्वी देखो, योगी देखो, महात्मा देखो, शास्त्रवादी देखो, क्या क्या तपस्या कर रहे हैं, परंतु उनको मिला है? कोई शंकराचार्य ऐसा जो कहता है कि मैंने भगवान को देखा? और यहां पर एकदम अनपढ़ माता जिसको कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप, उसको क्या नशा है, हम ईश्वरीय गॉडली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां मुझे भगवान पढ़ाता है, उसको लिखना भी नहीं आता है, तो ये क्या उसकी कृपा नहीं है? जो जो उसने किया है, वो सुबह उठाता है, क्या ये उसकी कृपा नहीं है? हम यहां आज इस हॉल में बैठे हैं, इस अमृत सरोवर में, क्या ये उसी की कृपा नहीं है? इस समय संसार के लोग क्या कर रहे हैं, जरा एक नजर दौड़ाओ, एक नजर संसार के लोग आज और इसी समय क्या कर रहे हैं? हम यहां कहां ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, विकारों में गर्त में फंसे हुए हैं, तो क्या ये उसकी कृपा नहीं है? वो सुबह अमृत वेला उठाता है, मुरली सुनाता है, सारे दिन भर उसकी मदद का अनुभव होना, सेवा का अवसर मिलना, क्या ये उसकी कृपा नहीं है? तो प्रश्न पढ़ लेना, उत्तर नहीं पढ़ना, यहां से रेडीमेड उत्तर लिखे है पर हम अपना उत्तर निकाले। सो दिस इज नोन एज आंसर मेथड। अगली है स्टॉप इन बिटवीन मेथड। पढ़ते पढ़ते जैसे कोई, ये जैसे ग्लास है, कोई लोग जूस वगैरह पीते हैं ना, कितना धीरे धीरे पीते हैं, थोड़ा पिएंगे ऐसे और फिर रुकेंगे और फिर रखेंगे, फिर अखबार पढ़ेंगे, सिप सिप थोड़ा थोड़ा। तो मुरली भी स्टॉप इन बिटवीन, थोड़ा सा पढ़ लिया, अभी चिंतन करो थोड़ा, फिर आ जाओ। नॉलेज से राजयोग सीखा, सीख राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। रुके, थोड़ा सा सोचा, फिर आ गए। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। आज बाबा ने आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द का प्रयोग किया है, वास्तव में हमेशा बाबा सोल शब्द का प्रयोग किया है। तो स्पिरिट और सोल में भी कोई अंतर है? ढूंढो, खोज करो, खोजना है। ऐसा कुछ नया आ गया कि आगे बढ़ना ही नहीं जब तक समझ में नहीं आता। जैसे वो व्यास ने कहा था ना गणेश जी को, जब तक समझ में नहीं आता है लिखना मत कुछ। तो स्टॉप इन बिटवीन मेथड। अगला है मेमोराइजेशन मेथड। सबसे कठिन काम संसार का, किसको अगर कहो ये वरदान याद कर लो तो कहते हैं बाबा ने थोड़ी ना कहा है ऐसे याद करने को, बहुत सारे ज्ञान युक्त तो उत्तर दे देंगे, परंतु मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोरी ड्रिल है ये। थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स आर डिस्क्राइब्ड इन महाभारत। महाभारत में तीन प्रकार के बल का वर्णन है, बाहुबलम, बुद्धि बलम, योग बलम। तो बुद्धि का बल बढ़ाने के लिए मेंटल ड्रिल्स की बहुत आवश्यकता है, मेंटल टीजर्स जिसको कहते हैं। कुछ कुछ चीजें पूरे ही याद कर लो, ऐसे के वैसे, जैसे के जैसे है वैसे। इससे क्या फायदा होगा वो वाली बात नहीं है, परंतु ये ड्रिल है, ये एक ट्रेनिंग है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ कुछ चीजें, जैसे स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ छान है। इसको इतना बार उसको रट लो, इतना बार उसको याद कर लो कि वो याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे। और जैसे ही परिस्थिति आ जाएगी और ऐसी एक स्थिति आ जाएगी, कहीं हद का मान छान है और हमें भी इच्छा हो गई कि हमको कैंडल लाइटनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया, क्या ये लोग ही जाएंगे क्या हमेशा, तो ये वाक्य याद आए, हद के मान शान में के पीछे दौड़ने के बजाय क्या हो जाओ, स्वमान में स्थित रहना ही श्रेष्ठ शान है। तो वहां जो संकल्पों की धाराएं चलने लगी थी एकदम स्टॉप हो जाएगी इस महावाक्य से। नहीं तो रहता है ना हर एक को, हमको भी बुलाया जाए, हमने बहुत सेवा की और बहन जी ने हमारा नाम ही नहीं लिया। सेवाओं का समाचार सुनाया गया तो हमारा नाम है ही नहीं उसमें, जबकि सबसे ज्यादा भाग दौड़ तो हमने की, हम ही यहां गए वहां गए यहां गए और यहां पर नाम तो हमारा लिया ही नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, हद के मान शान के पीछे, क्योंकि वाक्य हमने याद कर रखा था। मेमोराइजेशन मेथड, फिर है सेल्फ चेकिंग मेथड, मुरली पढ़ते पढ़ते ही अपनी चेकिंग करना। मुरली पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते ही चेकिंग चालू है खुद की, पढ़ते पढ़ते ही जो जो चीजें आ रही है, किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। क्या मेरे में अहंकार है, क्या मैं समझता हूं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, अपने को सेल्फ चेकिंग मेथड। अगली है स्पिरिचुअल टूर मेथड, एक बहुत लंबे टूर में चले जाओ बाबा के साथ। जैसे सतयुग आ गया तो सतयुग में घुस गए, फिर वहां से वर्णन किया बाबा ने कलयुग, तो वहां से निकलकर कलयुग आ रहे हैं, या कलयुग की आत्माओं को देख रहे। भक्ति का वर्णन आया तो वहां से निकलकर भक्ति, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये टूर, इसको कहते हैं पढ़ते पढ़ते ही टूर कर रहे हैं मन में, स्पिरिचुअल टूर मेथड इसको कहते हैं। फिर है नेम मेथड, NAME, नेम। आज की मुरली में सतयुग के लिए क्या क्या नाम का प्रयोग किया है बाबा ने, कलयुग को क्या क्या कहा, ये विकारी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया, पतित दुनिया, ये नरक है, रौरव नरक है, कुंभी पार्क नरक है, सड़ी हुई दुनिया, पुरानी दुनिया, खत्म होने वाली दुनिया, तमो प्रधान दुनिया, विषय वैतरणी नदी, कलयुग, पाप आत्माओं की दुनिया, रोने की दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया, रावण की दुनिया, नरक, घोर नरक, कितने सारे शब्द है। तो इसमें से खाली ये ढूंढो, कभी कभी एक ही चीज के लिए बाबा कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। सतयुग के लिए इतने नाम, परमधाम के लिए नाम, परमधाम के नाम की लिस्ट, स्वर्ग के नाम की लिस्ट, एक बार चलो वो दूसरी बात है, कलयुग के नाम की लिस्ट। इस मुरली में कौन कौन से स्वमान आए हैं उसकी लिस्ट, मैं संपन्न आत्मा हूं, मैं बाप में खोई हुई आत्मा हूं, मैं नाम मान शान से परे रहने वाली आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ शान में रहने वाली आत्मा हूं, मैं एकांत में बैठकर चिंतन करने वाली आत्मा हूं, बाप पर कृपा मुझ पर हुई है ऐसी महान भाग्यशाली आत्मा मैं हूं। स्वमान निकाल लिए मुरली से। अगला है एक्सपीरियंस मेथड, अनुभव। ये सब कुछ भी नहीं कर रहे, मुरली क्लास में बैठे हैं और अनुभव कर रहे हैं आश्चर्यपन का, जो जो सुनाया जा रहा है उन सब चीजों का गहन अनुभव अंदर ही अंदर। ज्यादा शब्द नहीं है बुद्धि में, केवल अनुभव, ये भी एक मेथड है। और अंतिम है बिजार मेथड, बिजार अर्थात एकदम अजीब अनोखी। उसमें क्या करना है, पढ़ते समय हमने ये पॉइंट्स पढ़ने के लिए निकाले थे, जैसे मुरली पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं हर बार यहीं से चालू करें, कभी कभी यहां से चालू कर दो नीचे से, कभी वरदान से चालू करो, कभी अगर पैराग्राफ्स है बने हुए तो यहां से चालू करो मुरली पढ़ना। जरूरी नहीं कि हम एकदम पहले से ही पढ़े, नवीनता लानी है। सबसे पहले उत्तर ही पढ़े और फिर सोचे प्रश्न क्या है, पहले उत्तर पढ़ लिया फिर सोचे प्रश्न क्या है, क्या पूछा होगा। कभी प्रश्न पढ़ा, कभी महावाक्य पढ़े, अलग अलग मेथड्स निकालनी है। तो कितनी हुई ये, 26 मेथड्स है, 26 मेथड्स ऑफ मुरली रीडिंग। कोई एक भाई जिसने लिखे है वो सारे एक बार सुन पढ़ के सुनाए। 21 हो गए, अच्छा और है, फिर और एक है मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड, मुरली को अपना बना लेना, इन्हें निजता का भाव, ये मेरे लिए कही है बाबा ने, खास मेरे लिए। ये मुरली में जाते समय ये भाव रखना कि आज खास कोई ऐसी बात मिलने वाली है जो केवल और केवल मेरे लिए है, हजारों आत्माओं में केवल मुझे बाबा ने यह बात आज जो कहने वाली है। इसको कहते हैं मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड। हाँ, फिर और एक हम भूल गए थे, एग्जाम्पल मेथड। मुरली में बाबा ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? बहुत मुरलियों में उदाहरण आते हैं, जैसे अभी अभी जब अव्यक्त मुरली जो चली, दादी बाबा आने वाले थे पर बाबा नहीं आए, तो वीडियो चलाया गया ना, एक रिकॉर्डेड वीडियो, जो कि पुराना वीडियो था 2008 की मुरली का, जिसमें बाबा ने कहा टॉप के पॉइंट पे बैठ जाओ। जैसे कोई बहुत ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और वहां से देखता है तो सारी पृथ्वी बॉल जैसी दिखाई देती है। तो ये उदाहरण दिया बाबा ने, सारी मुरलियों में उदाहरण भरे पड़े, जैसे 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 ये शब्द आते हैं, जैसे वो वैसे ये, जैसे वो वैसे ये। जैसे कल की संडे की मुरली है, उसमें एक सुंदर उदाहरण है जस्टिस का, सुप्रीम लॉ, जो जस्टिस होते हैं ना जज, जैसे अगर बाहर के जज कोई एक गलत निर्णय दे दे तो किसी का जीवन खराब हो जाता है, पूरा जीवन, बहुत समय या नुकसान, वैसे तुम भी जस्टिस हो, अगर तुम गलत निर्णय दे दो तो उसका जन्म जन्म की तकदीर खराब हो जाती है। उदाहरण, तो दिस इज नोन एज एग्जाम्पल मेथड। तो ढूंढो मुरलियों में बाबा ने टोटल कितने एग्जाम्पल दिए हैं, संसार के, अध्यात्म के, कछुओं का, प्राणियों के, प्राणी कौन कौन से, किस किस प्राणी को याद किया, मच्छरों को याद करते हैं कभी, टिड्डियों को याद करते हैं, गाय को याद करते हैं, जो गाय उगारती नहीं है वो बीमार है, जो बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते गोया बीमार है, केवल सुन लेते हैं बस और संतुष्ट, चिंतन नहीं करते वो बीमार है, गाय का उदाहरण। सारे प्राणियों को बाबा ने याद किया है मुरलियों में, कछुए से लेके सांप से लेके सबको, कहीं ना कहीं बिच्छू, टिंडन, कछमच, अवतार, तो ये सारी बातें कितने हो गए अभी, कैची वर्शन मेथड। एक दूसरा है, कुछ कुछ वाक्य में कैची पॉइंट्स होती है, बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट, कैची होती है, बिल्कुल जैसे कि कभी एकदम सुनी नहीं, ऐसी कैची पॉइंट, कैची वर्शन मेथड इसको कहते हैं। फिर है फोर सब्जेक्ट मेथड, ये सभी जानते हैं, मुरली से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इससे संबंधित कौन कौन सी पॉइंट्स है। आजकल तो इंटरनेट पे भी आता रहता है कि ज्ञान से संबंधित ये पॉइंट्स है। कई लोग हमने देखा क्लास में मुरली लिखते हैं, लिखते लिखते ही चार भाग कर देते हैं, ज्ञान से रिलेटेड जो है उस कॉलम में डालेंगे, योग से रिलेटेड उस कॉलम में, धारणा से रिलेटेड उस कॉलम में, और सेवा से रिलेटेड एक कॉलम में। दिस इज नोन एज फोर सब्जेक्ट मेथड। हो गए पूरे? हो गए। एक बार कोई भी भाई रिवाइज करा दे देखकर।
वर्ड मेथड, सेंटेंस मेथड, टॉपिक मेथड, स्टोरी मेथड, विजुअलाइजेशन मेथड, मेंटल मूवी मेथड, ऑडियो और लाउड मेथड। अच्छा, ओके, लाउड रीडिंग मेथड, ऑडियो मेथड एंड लाउड रीडिंग मेथड।
ऑडियो अलग, ऑडियो में सुनना है मुरली और साथ साथ पढ़ना है, लाउड रीडिंग में अकेले चुपचाप बैठ के जोर से पढ़ना एकांत में, तो दो अलग अलग है।
अंडरलाइन मेथड, टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड,
टेक्स्ट टू ड्रिल,
रिलेशनशिप मेथड, कॉन्ट्रास्ट मेथड, एक्सट्रैक्टिंग मेथड,
एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट्स,
न्यू पॉइंट्स, क्वेश्चन मेथड, आंसर मेथड, स्टॉप इन बिटवीन मेथड, मेमोराइजेशन मेथड, सेल्फ चेकिंग मेथड, स्पिरिचुअल टूर मेथड, नेम मेथड, एक्सपीरियंस मेथड, डिजायर मेथड,
बिजार, बिजार, अनोखी, अजीब, वियर,
बिजार मेथड,
स्ट्रेंज,
मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड, एग्जाम्पल मेथड, कैची वर्जन मेथड, फोर सब्जेक्ट मेथड।
बराबर।